ओम शांति। अभी हमारे बीच आदरणीय भ्राता जी डॉक्टर श्रीमंत भाई जी पधार चुके हैं। भाई जी MBBS, DA, MD, डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी, CCDM, CCGDM डिग्री लिए हुए हैं। तो आप इस संस्था से 1986 से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय 1991 से ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके साथ साथ आप राजयोगा मेडिटेशन के टीचर भी हैं। तो अभी हम भाई जी से सुनेंगे पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग। उससे पहले मैं अभी ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि श्रीमंत भाई जी का फूलों से स्वागत करें और बैज से सम्मान करें।
शांति। गुड इवनिंग एंड ए हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज दुनिया में सबसे ज्यादा आवश्यक मनुष्य के लिए क्या है? अगर आज की परिस्थिति को अगर हम देखें, वास्तव में आप सभी मेरे साथ सहमत होंगे कि स्वास्थ्य आज व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत एक जरूरी चीज है। स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता है, परंतु आज समाज की परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि क्या हो गया संसार में, घर घर में अनेक प्रकार की व्याधियां, बीमारियां ऐसी फैलती जा रही है। मनुष्य जीवन जैसा होना चाहिए क्या ऐसा है? आज हॉस्पिटल में मरीजों के लिए जगह नहीं, इतनी सारी दवाइयां, इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे हॉस्पिटल्स होते हुए भी आज हम सभी देश की दुर्दशा देख रहे हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को शेयर करने जा रहा हूं। मेरा विश्वास है आप सभी अच्छी तरह से सुनेंगे, दिल से सुनेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, मैं मेरा देश, सारे विश्व को कह रहा हूं। मैं समग्र विश्व मेरे सामने देख रहा हूं, मेरे देश के सभी जनता को देख रहा हूं, क्योंकि आपको अगर सुनाना माना सारा विश्व को सुनाना, आप सारी वर्ल्ड में एक एक व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं नम्र निवेदन करूंगा, मैं जो बातें आज शेयर करूंगा आप थोड़ा दिल से सुनिए, अगर आपके दिल तक पहुंचा तो मैं समझूंगा मेरी बातें सारे विश्व में लोगों के दिल तक भी पहुंचा है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे एक बहुत सुंदर टॉपिक। मैं आपको बता रहा था आज का विषय वस्तु। सबसे पहले तो नम्र निवेदन करूंगा कि अपने मोबाइल प्लीज साइलेंट मोड में रखिए, स्विच ऑफ कर लीजिएगा। रिजुवेनेटिंग लाइफ विथ ब्रह्मा कुमारीज। देखिए, जैसे कोई पेड़ पौधा बिल्कुल मुरझा जाता है, बिना पानी, बिना खाद, धूप, कैसे हालत हो जाती है, लेकिन जब हम उसके पानी डालते हैं, धूप में रखते हैं, फिर से एकदम संजीवित हो उठता है। इसी प्रकार आज मनुष्य के जीवन अगर देखा जाए तो मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें पुनः मनुष्य जीवन में आध्यात्मिकता रूपी जल और ईश्वरीय शक्ति रूपी धूप देकर मानव जीवन को पुनः संजीवित, पल्लवित, सुरभित, सुगंधित कर रहे हैं। तो इसलिए लेट अस रिजुविनेट आवर लाइफ। पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ। आज मनुष्य के जीवन तनावग्रस्त है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियों से सभी घिरे हुए हैं, परंतु आज इससे मुक्त कैसे हों? लोगों को भले पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स भी इसके चपेट में आज हैं। तो इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक जरूरी बात शेयर करूंगा। इट इज ए प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई हैव ब्रॉट द प्रेजेंटेशन। चेंज कीजिए, स्लाइड चेंज कीजिए। ए प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू ब्रॉट टू यू बाय मी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस वास्तव में आप सभी अगर विज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, किसी भी चीज के ऊपर अगर प्रेशर डाला जाता है तो उसमें जो इफेक्ट होता है उसको स्ट्रेस कहा जाता है। परंतु मेडिकल भाषा में हम स्ट्रेस किसको कहते हैं? मेडिकल भाषा में स्ट्रेस कहते हैं, इट इज अ स्टेट ऑफ इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन। जब कोई एक परिस्थिति आती है, चैलेंजेस आते हैं, जिसमें मनुष्य के अंदर एक मानसिक प्रेशर अनुभव करता है, एक द्वंद्व अनुभव करता है, इट इज ए फॉर्म ऑफ मेंटल एगोनी, एक मानसिक पीड़ा है, एक कष्ट है, एक यातना है। जब मनुष्य जीवन में ऐसी एक परिस्थिति आती है जब आपके सारे रिसोर्सेस उस परिस्थिति को निपटाने के लिए जब आप काबिल नहीं समझते हैं सब रिसोर्सेस होते हुए भी, तब आपके मानसिक जो द्वंद्व पैदा होता है उसको ही वास्तव में स्ट्रेस और टेंशन मेडिकल भाषा में कहते हैं। और आज अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि 60% ह्यूमन इलनेसेस आर ड्यू टू स्ट्रेस। हमें आज जितने भी बीमारियां हो रही है हम सभी को, चाहे डायबिटीज, चाहे हाइपरटेंशन, चाहे हार्ट अटैक, चाहे कैंसर, चाहे स्ट्रोक, आज जो मॉडर्न डिजीजेस है जो एकदम घर घर में सबको फैल रही है, ये सारी बीमारियों का जड़ स्ट्रेस है। मोर देन 60% इलनेसेस। और स्ट्रेस ऐसी एक बीमारी है जो हमारे शरीर का एक भी अंग नहीं छोड़ता है, एक भी अंग नहीं छोड़ता है। हमारे ब्रेन पर, हमारे हार्ट पर, हमारे स्टोमक पर, हमारे पेंक्रियास पर, आंतड़ियों पर, गोनाड्स पर, शरीर का एक भी अंग नहीं छूटता है जिस पर उसका बुरा असर नहीं होता है। और किसने कहा है, इट इज ए प्रॉक्सी किलर, इट इज ए प्रॉक्सी किलर, इट इज द नंबर वन प्रॉक्सी किलर। माना एक होता है किलर, दूसरा है प्रॉक्सी किलर। कहने का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति किसी को मर्डर कर देता है, पुलिस तो उसको तुरंत ही अरेस्ट कर लेता है, लेकिन बाद में जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करता है तो पता चलता है मास्टरमाइंड तो और कोई था, वो कराने वाला पैसा देके और कोई था। इसी प्रकार आज लोग कहते हैं हार्ट अटैक होके मर गया, लेकिन हार्ट अटैक क्यों हुआ? अगर उसका देखिए अच्छी तरह से अनुध्यान करेंगे, घर में कोई ऐसे परिस्थिति आई, तू मैं हुआ, गुस्सा आया, हार्ट अटैक हो गया। कहीं बिजनेस में लॉस हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और कुछ हो गया, हार्ट अटैक। तो कारण देखा जाता है स्ट्रेस मौत का कारण है, लेकिन हम सोचते हैं हार्ट अटैक मौत का कारण है। तो आज देखा गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौत आज हो रहा है तो वो स्ट्रेस के कारण। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई होमिसाइड कर रहा है, किसका एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं और कुछ हो रहा है। तो ये सारी बीमारियों के कारण वास्तव में जड़, इट इज बिहाइंड द इनिशिएशन एक्सेसरवेशन ऑफ द डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन। ये सब बीमारी की बढ़ोतरी के कारण और इसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन का मेन कारण स्ट्रेस है। सो आज कुछ बीमारियां बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो एक दूसरे को फैलती नहीं है। एक समय था जब हमारे देश में लोग प्लेग से मर जाते थे, फैजा होता था मर जाते थे, स्मॉल पॉक्स होता था मर जाते थे, गांव गांव साफ हो जाता था। आज वो दिन नहीं है। आज घर घर में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक, कैंसर, ये 5 WHO का कहने के मुताबिक ये 5 मुख्य बीमारियां हैं जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जिसके लिए हमारे भारत सरकार, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये सब बीमारियों के लिए कंसर्न है कि ये बीमारियां घर घर में फैल रही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इसके चपेट से कोई बच सके। इसलिए हमारी भारतीय सरकार बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, अंतर्जातीय स्तर से भी खर्चा हो रहा है, लेकिन इस बीमारी थोड़े साल के अंदर ही इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मौत हो रहा है हार्ट अटैक से लोगों का। लेकिन हार्ट अटैक वास्तव में आपको बताऊं कि 80-90% डायबिटीज पेशेंट्स का हार्ट अटैक से मौत होता है। तो हार्ट अटैक मौत का कारण है कि डायबिटीज हार्ट अटैक मौत का कारण है? डायबिटीज जब शुगर कंट्रोल नहीं होता है, खून एकदम गाढ़ा हो जाता है, चाशनी जैसा बन जाता है, थिक हो जाता है, हमारे नसों को ब्लॉक कर देता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो डायबिटीज इज द किलर, प्रॉक्सी किलर, डायबिटीज उसके पीछे है और डायबिटीज के पीछे स्ट्रेस का हाथ है। इसी प्रकार आप देखिए आज हमारे देश में हर साल 10 लाख लोगों का मौत हो रहा है डायबिटीज के कारण, हर साल 10 लाख। दस लाख किसे कहा जाता है? एक बीमारी के कारण अगर 10 लाख देश में मर रहे हैं तो कितनी बड़ी गंभीर समस्या है सोच लीजिएगा। आपको और भी बताऊं, हर 20 सेकंड में किसी न किसी एक डायबिटीज मरीज का पैर कट रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी हॉस्पिटल में एक डायबिटीज मरीज का पैर काट दिया जा रहा है, और हर 6 सेकंड में एक डायबिटीज पेशेंट का मौत हो रहा है। सारे वर्ल्ड में 0.5 करोड़ लोगों का मौत हो रहा है डायबिटीज से, 0.5 करोड़ लोगों का एक साल में। तो ये बीमारी कितनी गंभीर है सोचिए। इसी प्रकार हाई ब्लड प्रेशर, जितने मरीज आज डायबिटीज के हैं उसके 2 गुना हाई ब्लड प्रेशर में सफर कर रहे हैं। आज समग्र वर्ल्ड में 25% एडल्ट पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर भी कितने खतरनाक बीमारी है। हमारे भारत में हर एक मिनट में नए 9 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। 1 मिनट में 9 हाई ब्लड प्रेशर के मरीज पैदा हो रहे हैं। आप सोच लीजिए जिस प्रकार ये बीमारियां फैलती जा रही है। और देखिए, हमारे भारतवर्ष में भी सर्वे करके देखा गया था, 24% ऑफ द एडल्ट मेल्स आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। तो आज दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, अगर ये 2 बीमारियां अगर ठीक हो जाए तो बाकी हार्ट अटैक से जितना मौत हो रहा है, बाकी जो मौत हो रहा है काफी कम हो सकता है। तो ये दोनों बीमारियां वास्तव में साइलेंट किलर है। आप देखा, अच्छी तरह से देखा, देख लीजिए और एक बार देख लीजिए, क्या देखा? किसी के सिर पर अगर इतना धमाल, इतना जोर से एक धम मार दिया जाए, एक हथौड़ा, क्या होगा? वहां ही कलाप्स हो जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों बीमारियां आज साइलेंट किलर्स है। लोगों को चेस्ट में जरा सा पेन होता है, डर जाते हैं, मर जाऊंगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन तुरंत डॉक्टर जो कहेगा करने के लिए तैयार। लेकिन एकदम ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर हाई है, लोगों को डॉक्टर साहब चलता है, मेरा तो हमेशा इतना रहता है, एक दिन सडन स्ट्रोक होके, एक दिन सडन पैरालिसिस होके, सडन हार्ट अटैक होके लोग फिर आ रहे हैं। तो इसलिए आज देखा जाता है ये दोनों ही वास्तव में मौत के कारण है। एंड स्ट्रेस इज डायबिटोजेनिक। जिनको स्ट्रेस होता है उसको ही डायबिटीज होता है, जिनको टेंशन होता है उसको ही डायबिटीज होता है, मेजोरिटी लोगों को। हमारे पूर्वजों को, माँ बाप दादा दादी नाना नानी को अगर डायबिटीज है तो हमें ये बीमारी होती है। जेनेटिक इनहेरिटेंस द नेचर, परंतु हम अपने लाइफस्टाइल को अगर ठीक करते हैं, तनावग्रस्त जीवन नहीं जीते हैं तो ये बीमारी होगी नहीं। जैसे हमें तनाव आ जाता है जीवन में, स्ट्रेस आ जाता है, ये बीमारी तुरंत आ जाती है। सो स्ट्रेस इज डायबिटोजेनिक। अगेन, टेंशन कॉजेस हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा जाता है, अर्थात टेंशन जब हाइपर हो जाता है तब हाई बीपी भी हो जाता है। तो आज तनाव के कारण मेजोरिटी लोगों को डायबिटीज और हाई बीपी हो रहा है, और हाई बीपी और डायबिटीज के कारण ही मेजोरिटी लोगों के मौत हो रहा है हार्ट अटैक से। आज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के कारण 50% लोगों को, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है, 50% लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन में नस फट जाते हैं, पैरालिसिस हो जाती है। तो आज दुनिया में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर ये दोनों घातक बीमारियां हैं, मोस्ट सीरियस है, जो हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। दुनिया में आज और किसी में चैंपियन हो ना हो, भारतवर्ष 3 बातों में चैंपियन है। जितना हार्ट अटैक भारतवर्ष में हो रहा है दुनिया में कहीं नहीं, जितना हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हमारे भारतवर्ष में है दुनिया में कहीं नहीं, और डायबिटीज भी आज हम वर्ल्ड कैपिटल बनने जा रहे हैं। हमारे लिए खुशखबरी है। ये तो वास्तव में एक दुखद विषय है। भारत जैसा निरोगी देश दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। हमारा देश इतना सुंदर, हमारी जीवन शैली इतना सुंदर, परंतु पिछले कुछ दशकों के अंदर, 3-4 दशक के अंदर, 30-40 साल के अंदर, हम सभी भारतवासी पाश्चात्य सभ्यता को अंधानुकरण करते करते आज ये हमारी दुरावस्था है। आज एक भी परिवार नहीं है जिसके घर में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के पेशेंट नहीं होंगे। तो मेरा कहने का भावार्थ है, देखिए जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन सोसाइटी है उनका कहना है कि आप अपने जीवन शैली को बदलो तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा। दवाई इसका इलाज नहीं है। जब तक जीवन शैली को नहीं चेंज करेंगे ये बीमारी से कोई बच नहीं सकता है। इसी प्रकार वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर हर साल हम वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट करते हैं, और इस साल में खास 2014-2016 तक, इस साल में हम खास जो इसका थीम रखा गया है, हेल्दी लिविंग एंड डायबिटीज, हमारे जीवन शैली को बदलें। और 2015 खास 2015 को रखा गया है हेल्दी ईटिंग हैबिट, हमारे खान पान कैसे हो, हमारे भोजन कैसे हो। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का कहना है प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, अदरवाइज योर किड में डाई इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम देख रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूं क्लिनिक में, बड़े बड़े शहरों से मां बाप आ रहे हैं, मां बाप को कोई बीमारी नहीं, लेकिन उनके बच्चे छोटे छोटे 15 साल 16 साल की उम्र के बच्चे पूरा एकदम फुटबॉल की तरह गोल मोटल हाथी की तरह जंक फूड फास्ट फूड खा खा के, और 15 साल की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, मां बाप को कोई बीमारी नहीं है। इसलिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का कहना है प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, योर किड्स में डायबिटीज फॉर यू। सो क्या करना पड़ेगा अगर सचमुच देश को बचाना है मेरे भाई और बहनों, क्या करना पड़ेगा? हमें लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाना पड़ेगा। और मैं समझता हूं जितनी सेवा आप कर सकते हो हम नहीं कर सकते। डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल में आइए देखिए, जिस प्रकार हम मरीजों के घरों में फंसे रहते हैं, हमको फुर्सत ही नहीं है किसको क्या समझाएं। लेकिन आप देश के लिए आप बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट है, सारे देश को संदेश देने के लिए आपको समय लगे, यूं समय एकदम आप चुटकी बजा के आप सारे देश को इस खबर सुना सकते हो कि अभी किस प्रकार हालत में हम गुजर रहे हैं, अगर जिस प्रकार हम जा रहे हैं आने वाले समय में क्या होगा, हमें अभी क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए द सॉल्यूशन इज हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल। बट व्हाट इज हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल? सबसे पहले तो हम चर्चा करना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि व्हाट इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मींस आज सवेरे से लेकर रात तक जिस प्रकार आप जीवन जीते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कब उठते हो, कब बैठते हो, किसके साथ बातचीत करते हो, किस प्रकार जीवन जी रहे हो सारा दिन सवेरे से लेकर रात तक, उसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं। ओके? आज जो चेंजिंग सिनेरियो देख रहे हैं, आज समाज के जो बदलाव है आप देख रहे हो, किस प्रकार का सिनेरियो आप देख रहे हो, एक समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। देखिए आप क्या देख रहे हो चित्र में, एक हाथ में क्या है, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में सेलफोन। सन्यासी जीवन त्याग तपस्या की जीवन है, लेकिन आज किस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं? घर घर में हमारे पास टेलीविजन है, एक हाथ में रिमोट कंट्रोल, दूसरे हाथ में क्या, कितना पॉपकॉर्न, खुद भी पॉपकॉर्न जैसा बन गई है देखो। और हम कहां सो रहे हैं, किस प्रकार का सो रहे हैं, हमारा रिमोट कंट्रोल कहां है, जब हम खर्राटे लगा के सो रहे हैं पेट के साथ साथ रिमोट कंट्रोल भी डांस करता होगा पेट के ऊपर, और सवेरे उठ के हाय मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, नहीं होगा, कहां सो रहे हैं, किस प्रकार का सो रहे हैं, ये सोने का तरीका है। और साथ साथ आज सभी हम हेल्थ कॉन्शियस तो बन गए हैं, हम सभी एक्सरसाइज करने के लिए हेल्थ क्लब्स में जाते हैं, लेकिन देखिए बीच में जो सीढ़ी है सीढ़ी में कोई नहीं चढ़ रहा है, वो बगल में जो एक्सकलेटर है आप खड़े हो जाओ ऑटोमेटिकली स्वयंचालित सीढ़ी ऊपर पहुंच जाओगे, एक्सरसाइज करने के लिए लोग जा रहे हैं, सीढ़ियां कोई नहीं चढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सवेरे मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक किसका करा रहे हैं, किसका करा रहे हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस तो बढ़ा है। तो जिस प्रकार का जीवन शैली हम जी रहे हैं देखो किस प्रकार का जीवन है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चे, आजकल बच्चे कोई खेल कूद आउटडोर गेम तो जीरो हो गया, जिसको देखो सेलफोन, सब प्रकार के वीडियो गेम्स, ये सब चीजें हैं सबके पास, माँ बाप सब खुशी से देते हैं सबको, बच्चे आउटडोर गेम बिल्कुल जीरो। फिर क्या हालत है, एक छोटा सा बच्चू इतना 5-6 साल का फुटबॉल की तरह गोल, उसका टीचर उसको कहता है अरे पप्पू तुझे तो रोज खेलना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, डेली कुछ ना कुछ तो खेलना चाहिए। तो कहता है सर मैं तो डेली टेनिस खेलता हूँ, डेली फुटबॉल खेलता हूँ, डेली क्रिकेट खेलता हूँ। तो टीचर एकदम सोच में पड़ गया, पूरा फुटबॉल की तरह गोल मोटोल कहता है कि डेली फुटबॉल खेलता हूँ, डेली टेनिस खेलता हूँ, डेली क्रिकेट खेलता हूँ। तो टीचर कहता है कि कितना घंटा खेलता है, कहता है सर मेरा जब तक मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होता है खेलता हूं सर। तो ये हाल है आज। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को सेफ रखना जरूरी है, नेक्स्ट है, आज हमारे घर घर में छुट्टियों के दिन में खास देख लो क्या करते हैं लोग, 20 घंटा टीवी के सामने। पहले जमाने में कोई भी अगर मित्र संबंधी आए तो बैठ के हम सुख दुख होते थे, पूछते थे कैसे आना हुआ, क्या हुआ, हम अतिथि कहते थे। लेकिन आज कोई आए तो तुरंत ही चालू हो जाएगा इडियट बॉक्स, मैं भी बैठ के देख रहा हूं, तू भी बैठ के देख। और साइंटिस्ट लोगों का कहना है प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस, जो लंबे समय तक बैठे रहता है उसको ही सारी बीमारियां होती है, लंबे समय तक बैठने से ही सारी बीमारियां होती है। इसलिए ये सब आज घर घर में सिनेरियो देख रहे हो। नेक्स्ट है, आज ये भी फैशन हो गया है थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी, डॉक्टर भी कहेंगे आपको थोड़ी थोड़ी, मॉडरेट अमाउंट, परंतु हमेशा याद रखिए ए पॉइजन इज अ पॉइजन। आप एनी अमाउंट ऑफ पॉइजन, आप अगर ज्यादा पॉइजन लेंगे तो तुरंत कॉम्प्लिकेशन से मर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी लेंगे तो क्या होगा, स्लो पॉइजनिंग होगा। तो अल्कोहल डिस्ट्रॉयज द पैनक्रियास, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, डायबिटीज होता है, इट इज डायबिटोजेनिक। ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, हार्ट अटैक होगा, मोटापा बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है एकदम सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। डायबिटीज पेशेंट अगर कोई शराब लेता है, शुगर इतना लो हो जाता है, डेथ, लीवर खराब होगा तो सभी जानते हैं। तो आज लेकिन ये मॉडर्न सोसाइटी में फैशन हो गया है थोड़ा थोड़ा। और देखिए हम सब ये बैलेंस की कला दिखा रहे हैं, खुद ही खड़े होने के लिए उसकी सक्षमता नहीं है, लेकिन बैलेंस की कला दिखा रहा है। ये समाज का फैशन, सोसाइटी का फैशन हो गया है, लेकिन ये बहुत स्वास्थ्य के लिए हाजार्डस है, लोगों को पता ही नहीं है। नेक्स्ट है, आज हम सभी तंबाकू, ये घर घर में, गांव गांव में मैं देखता हूं, माताएं भी कितने पी रहे हैं। आप देखिए, क्या हम फैक्ट्रीज हैं जो हमारे मुंह से धुआं निकले? नहीं नहीं, हमारे मुंह से तो दुआएं निकलनी चाहिए दूसरों के लिए, ना कि दुआएं। आज तंबाकू इन एनी फॉर्म इज हाजार्डस, कोई अगर तंबाकू किसी भी रूप में लेता है, चाहे खैनी के रूप में, चाहे पेस्ट के रूप में, चाहे दंतमंजन के रूप में, चाहे छींकनी के रूप में, तंबाकू इन एनी फॉर्म इज हाजार्डस, वो भी डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर का मेन कारण है। लेकिन आज घर घर में यही फैशन बना है हम समाज में, तो इसको कौन रोकेगा, कौन ठीक करेगा? और डॉक्टर कहने से, क्योंकि डॉक्टर ही इसके गुलाम है, कौन ठीक करेगा बताइए? तो समाज के आंखें खुलने के वाले आप हो, आप इसकी सत्यता बताओ सबको कि इससे ये सब हो रहा है। देशवासी जागो, ये सब जहर है, आप जहर खा रहे हो तो स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? तो आप ही लोगों की आंखें खोल सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पुलिसमैन देख लीजिए, मनुष्य जीवन में फिट रहना चाहिए। आज भारतवर्ष में हमारे देवी देवताओं को देख लीजिए, जितने भी राधे कृष्ण, राम, सीता, लक्ष्मी, नारायण आदि, जिसको भी देख लीजिए, कैसे एकदम फिट एंड फाइन बॉडी, एब्सोल्युटली एकदम फिट बॉडी। लेकिन आज भारत में लोग मोटे होते जा रहे हैं। अमेरिका का सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या आज मोटापा है, 60% अमेरिकन आर ओबीज। और भारत में भी हम कंपटीशन करते जा रहे हैं, 2025 तक भारत अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तो जो फिट रहना चाहिए, मैं दिखा रहा था पुलिसमैन, जो कि खुद देखिए कैसे हालत है, तो किसी ने पूछा ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैं बोला ये दोनों बातें तो कर रहे हैं लेकिन मुंह से बात नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है इट हैज बिकम अ डिजीज आवर लाइफस्टाइल। आज जरा भी हम चलने के लिए तैयार नहीं है, दो कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं है, तो बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी, क्या होगी? सो लाइफ प्लस स्टाइल इज लाइफस्टाइल, किस प्रकार का जीवन जीना जी रहे हैं हम। सो लेट अस चेंज आवर लाइफस्टाइल एंड चेंज आवर लाइफ। जब तक हम अपने जीवन शैली को नहीं सुधारेंगे, ये बीमारियों से कोई बच ही नहीं सकता है, जीवन में सदा हेल्दी कोई रह नहीं सकता है। और सबसे पहले रोल मॉडल हमें बनना पड़ेगा। मैं कहूंगा जो न्यूअर जेनरेशन है, आज इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न है कि आने वाले पीढ़ियों को क्या होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कैंसर होना शुरू हो गया है। हार्ट अटैक कभी सुना ही नहीं था, 30 साल पहले जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे प्रोफेसर सब मेडिसिन कहते थे हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, ओल्ड एज डिजीज है, फॉरगेट अबाउट दिस। आज हम 18 साल में हार्ट अटैक देख रहे हैं बच्चों को, 18 साल, 20 साल भी नहीं हुआ है। तो कौन बचाएगा किसको? तो वी पेरेंट्स शुड बी द रोल मॉडल। मां बाप अगर बच्चों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। हम इस बातों से अगर सचेतन होके बचपन से ही बच्चों को सिखाएंगे तो ही एक अच्छा समाज हम बना सकते हैं। मैं तो कहूंगा बहुत प्रकार के आलतू फालतू एड्स देने के बजाय आप स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आप सभी का बहुत बड़ा अवदान रहेगा और एक समाज, एक स्वस्थ समाज गठन करने में आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। आप अगर निभाएंगे तो ही समाज को बचा सकते हैं, नहीं तो आप देखेंगे। मैं आपको कहूंगा सिर्फ 1970s में व्हेन आई वाज अ मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट डायबिटीज हमारे देश में खाली 1% लोगों की थी, 1%। आज कितना हो गया है जानते हैं? 35%। बड़े बड़े सिटी में 30%, 35%। 30 साल में अगर कोई बीमारी की 30% बढ़ोतरी हो सकती है, आने वाले समय में क्या होगा? तो इसलिए आप सभी लोगों को जगाइए, सचेतन कराइए, क्या हो रहा है संसार में, जागो मेरे भाई बहने। तो हमें क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा? सो लेट अस अडॉप्ट ए हेल्दी लाइफस्टाइल। क्या करेंगे हम, कैसे पॉजिटिव और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, क्या करेंगे? सभी कह रहे हैं कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो, लेकिन कैसे होना चाहिए लोगों को पता नहीं है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लोगों को एक सकारात्मक जीवन शैली सिखाया जाता है, किस प्रकार जीवन जिए ताकि हम बिल्कुल स्वस्थ जीवन, सिर्फ एक जीवन के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म हम निरोगी बन सकते हैं। यहां हमारे ब्रह्मा बाबा, द फाउंडिंग फादर ऑफ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इज द रोल मॉडल, इज द रोल मॉडल। बाबा को डायबिटीज था, लेकिन उनके जीवन में 60 साल की उम्र में जब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक आध्यात्मिक संक्रांति जगा दी समग्र विश्व में। बाबा 93 उम्र तक साकार शरीर में थे, परंतु डायबिटीज होते हुए भी डायबिटीज उनके बाल भी बांका नहीं कर सका। बाबा की आंखें खराब नहीं हुई जो चश्मा पहनना पड़ा, बाबा के पांव खराब नहीं हुए जो डंडा पकड़ना पड़ा। बाबा डायबिटीज के साथ होते हुए भी समग्र विश्व में आज ऐसे एक आध्यात्मिक संक्रांति रचा दिए, आप सभी देख रहे हो। ऐसा देश नहीं जिस देश में ब्रह्मा कुमारी संस्था का विश्वविद्यालय की शाखा प्रशाखा नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा इज अ रोल मॉडल फॉर स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं आपको वही बताना जा रहा हूं, व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, जिसको पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल कहा जाता है। इसमें कुछ बातें आपको शेयर करूंगा, 8 बातें मुख्य रूप में। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हम सभी जानते हैं, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। देन पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। थर्ड है बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट। नेक्स्ट है फिजिकली एक्टिव लाइफ एंड एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट है हेल्दी रिलेशंस एंड फैमिली लाइफ। नेक्स्ट है प्यूरिटी इन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। एंड नेक्स्ट इज हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। नेक्स्ट है गुड हाइजीन। ये 8 बातें अगर जीवन में हम अडॉप्ट करते हैं, इसको ही हम हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल कहेंगे, इसको ही स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल कहेंगे। मैं एक एक इसका चर्चा करूंगा अभी। सबसे पहले हम सभी को पता है भारत में अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आज ऑनेस्टली बताइए कितने लोग हम उठते हैं। मुझे बचपन में याद है, मेरे दादा ग्रैंडफादर हमारे घर में 6 बजे के बाद कोई सो ही नहीं सकता है, मैं बता रहा हूं। इतने बड़े डंडा लेके आके पिटे करते, मुझे तो कहते जा दौड़ के आ सवेरे सवेरे। मैं आप सभी को अगर बुरा ना लगे, मैं पूछूं जो सवेरे 5 बजे उठते हैं हाथ उठाइए। वाह वेरी गुड, 40-50%। एक जोरदार ताली हो जाए कम से कम। देखिए मैं कहूंगा कि जो भी नहीं उठते हैं भाई बहने, आज यहां से सीख के जाना है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारी वर्ल्ड में कहीं भी जाइए देखना, सारी वर्ल्ड में हम सभी 4 बजे से पहले उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है, 4 बजे से पहले उठ जाते हैं। और बहुत सुंदर गीत बजता है, अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले जागो, प्रभु मिलन की यही बेला है मेरे लाडले जागो। सभी हम जाग जाते हैं और पहला सवेरे उठते ही बहुत एक सुंदर चिंतन मन में, लोग उठते ही क्या करते हैं, या तो अखबार पढ़ेंगे या तो टीवी देखेंगे और दुनिया की सारी नेगेटिविटी सारा दिमाग में डालेंगे तो क्या होगा? नहीं, सवेरे उठते ही क्या करना है देखिए, इज योर स्लीप एडिक्वेट, क्या आपकी नींद एडिक्वेट है, जितना होना चाहिए उतना है? अगर नहीं, इफ इट इज नॉट, देन ओपन योर आईज टू फॉर इट्स रिपरकेशन। इसका परिणाम क्या है, थोड़े आंख खोल करके सुनिए सभी मेरे भाई और बहनों। क्यों कह रहा हूं कि देखा गया है, अगर कोई ठीक नींद नहीं करता है उसको डायबिटीज होने का, हाई ब्लड प्रेशर होने का, कैंसर होने का, मोटापा होने का, बहुत सारी बीमारियां बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा हो जाता है दूसरे लोगों से। और ये अभी ये सिद्ध करके बताए हैं साइंटिस्ट लोगों ने, जो इनएडिक्वेट, जिसकी स्लीप ज्यादा है या कम है, उनको ही हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक आदि सब बीमारियां हो रही है, जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता में हजारों साल पहले भगवान वाच है। हम पढ़ते हैं भगवान अर्जुन को कहते हैं, अति निद्रा अनिद्रा योगी का लक्षण नहीं है, हे अर्जुन तस्मात सर्वेषु कालेषु योगिर भवार्जुन, हे अर्जुन तू योगी बन जा। और जो योगी है वो निरोगी है, जो भोगी है वो रोगी है। आज दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, योगी और भोगी। तो जल्दी जो उठ के सवेरे सवेरे उठते ही प्रभु चिंतन करता है, परमात्मा से योग लगाता है, तो निरोगी रहता है। लेकिन अगर हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं, लेट खाते हैं, लेट सोते हैं, सब प्रकार की बीमारियां होगी। आज हमारे जीवन शैली, हम भारतीय संस्कृति को भूल चुके हैं। आज बड़े शहरों में जाओ, आप बॉम्बे जाओ, देखना रात को 1 बजे भी जाओ, आपको लगेगा दिन का 1 बजा है। कोई खा रहा है, कोई घूम रहा है, पूरा रात को 1 बजे 2 बजे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं वहां जाता हूं बॉम्बे में, छोटे छोटे ऐसे गार्डन जैसा है, कभी कभी एयरपोर्ट से उतर करके कभी जाते समय देखा हूं, इतना बड़ा बड़ा पेट सेठ लोग रात को 2 बजे वॉकिंग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे रात को 2 बजे कोई वॉकिंग करता है? किस प्रकार का जीवन शैली हमारे, आप सोच लीजिएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे नींद कम से कम एक्चुअली 5-6 घंटा होना चाहिए। 5-6 घंटा रात को ही एडिक्वेट नींद अगर है तो हम, हमारे शरीर में देखा गया है जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जिससे हमारा बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो सब बहुत कम हो जाता है। तो रात को 5-6 घंटा हमें अच्छी तरह से सोना चाहिए। अगर आप रात को ठीक से नहीं सोते, और वो भी सवेरे रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक, ये जो समय है ये सोने का समय है। देखा गया है 10 बजे से 4 बजे तक जो नहीं सोते हैं उनको ही ये सब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सब बीमारियां, कैंसर, ये बीमारियां बहुत ज्यादा दिखाई देती है उनके जीवन में। तो इसलिए हमारे जीवन में डू नॉट इग्नोर योर स्लीप, ए साउंड स्लीप इज ए मस्ट फॉर गुड हेल्थ। अगर प्रॉपर, अगर हम 4-5 घंटा 6 घंटा अगर ठीक से नींद करते हैं रात को, तो ही जाके ये सब बीमारियों से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है उठते ही हमारे मन में क्या विचार आए, क्योंकि मॉर्निंग सोस द डे। सवेरे उठते ही अगर सारे दिमाग में नेगेटिव डाल दिया, क्या होगा सारा दिन? अगर सवेरे सवेरे उठते ही कुछ पॉजिटिव विचार धारा मन में डाल दिया और सुंदर शुभ चिंतन, बहुत सुंदर प्रभु चिंतन, आत्मचिंतन के मन सवेरे सवेरे ही एकदम गदगद हो गया, खुशी से एकदम आनंदित प्रफुल्लित हो गए, तो सारा दिन क्या होगा? सारा दिन भी खुशी में नाचते रहेंगे। तो इसलिए सवेरे उठते ही पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 5 पॉजिटिव थिंकिंग, बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग विल एम्पावर यू। आपके अंदर आत्मिक शक्ति का विकास होगा, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। जैसे एक आप देखना, अगर कैटरपिलर कैसे एकदम मेटामॉर्फोसिस होते होते प्यूपा लार्वा होके एक जब बटरफ्लाई बन जाता है, तितली बन जाता है, कितना सुंदर उसका जीवन बन जाता है। तो इसलिए इस प्रकार हमारे मनुष्य जीवन को भी हम, वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ। सो पॉजिटिव थिंकिंग, इट विल इवोक मोर एनर्जी, मोर इनिशिएटिव एंड मोर हैप्पीनेस। जीवन में अगर सचमुच सुख शांतिमय जीवन और बहुत बहुत सुंदर एक जीवन बनाना चाहते हो तो पॉजिटिव थिंकिंग इज ए मस्ट, बिकॉज ए पॉजिटिव माइंड इज आवर ट्रू फ्रेंड। कहते हैं आत्मा ही अपना शत्रु है, मित्र है। कैसे है? जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो ही हम अपना मित्र बनते हैं, जब नेगेटिव सोचते हैं हम अपना शत्रु बन जाते हैं। आप देखिए वही लड़की, लेकिन इस साइड में आप देख रहे हो कैसे चेहरा है, दूसरे साइड में देख रहे हो कैसा चेहरा है, इसका आधार क्या है? एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। उसके मन में क्या दिमाग में चल रहा है जो रो रही है, और वही लड़की देखो हंस रही है। तो सारा खेल जीवन का दोस्तों हमारी सोच विचार है, हम क्या सोचते हैं सारा दिन। तो कहने का तात्पर्य है, हमारे जो माइंड है, ये माइंड इट हैज 4 फैकल्टीज, दे आर मेमोरी, एटीट्यूड, थॉट्स एंड इमोशन। जो मैट बताया MAT, मेमोरी, एटीट्यूड, थॉट्स एंड इमोशंस, एक एग्जांपल देने से क्लियर होगा। देखिए कुछ भी हम पास्ट में देखे हैं, सुने हैं, तो वो हमारे मेमोरी के रूप में रिकॉर्ड होता है हमारे माइंड में, और जैसी मेमोरी होती है उसी अनुसार स्मृति होती है, इस प्रकार हमारी दृष्टिकोण होती है, वृत्ति होती है, और जैसे दृष्टिकोण होता है, वृत्ति होती है, उसी अनुसार हमारे थॉट्स हमारे मन से चलता है, और जैसे हमारे थॉट्स होता है हमारा इमोशंस हमारी संवेदना ऐसी हो जाती है। स्मृति, वृत्ति, संकल्प, संवेदना, ये सब मन के फैकल्टीज है। ये सब अगर नेगेटिव हो जाता है, लेट्स सी, इफ दीज आर नेगेटिव दे विल किल यू, इफ दे आर पॉजिटिव दे विल हील यू। जब हमारे ये चारों फैकल्टीज नेगेटिव हो जाते हैं, माइंड नेगेटिव हो जाता है, तो हमारे अंदर एकदम परिवर्तन होके सारे सब बीमारियां शुरू हो जाती है। लेकिन ये इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो हीलिंग शुरू हो जाती है। एक सिंपल उदाहरण देने से क्लियर होगा। मैं एक चित्र लेके आऊंगा, एक सरस्वती देवी की चित्र दिखाऊंगा आपको, आप देखते ही याद आ जाएगा, मेमोरी आ जाएगी, ये तो सरस्वती देवी ज्ञानदात्री है। तुरंत उनके प्रति दृष्टिकोण आपका कैसे होगा, आपके विचार कैसे आएगा, आप तुरंत श्रद्धा से नमन करना शुरू कर देंगे। मान लीजिए कोई ऐसे लेडी कैरेक्टरलेस, बिल्कुल कोई किसी का लेके आके दिखाऊं, आप जानते हो कैरेक्टरलेस लेडी है, देखते ही कैसा होगा, तुरंत रिपल्शन होगा, आप मुंह ऐसा कर देंगे, आपके हाव भाव कैसे हो जाएगा। तो मेमोरी, एटीट्यूड, थॉट्स एंड इमोशंस, दीज आर द फैकल्टीज ऑफ द माइंड। इसको हम पॉजिटिव बनाए, पॉजिटिव बनाए। और हमारी दादी कहती है, दादी माँ, माइंड योर माइंड द टूल फॉर टोटल हेल्थ। अगर संपूर्ण स्वस्थ रहना चाहते हो, स्वस्थ मन को कभी नेग्लेक्ट नहीं करो। मन अगर ठीक हो गया तो कहते हैं मन जीते जगत जीत, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन ठीक होना चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं 90% से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमाटिक है, तो पहले सोमा को ठीक करेंगे, पहले साइकी को ठीक करें, किसको ठीक करें? तो इसलिए मन को ठीक रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। सो हाउ टू सेट द माइंड फ्री फ्रॉम ऑल दीज रबिस, जो आज दुनिया में देखिए क्या क्या सारे नेगेटिविटीज सब दुनिया में है, इससे कैसे हम बचाए, कैसे मुक्त करें मन को? इससे मुक्त करने का एक ही तरीका है दोस्तों, वो है मेडिटेशन। जो राजयोग मेडिटेशन रेगुलर करेगा उसके दिमाग से ये सब गंदगी निकल जाएगी, ये सब निकल जाएगी। मन में उठते ही हम सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में उठते ही हम सभी मन में सकारात्मक विचार, कैसे सुंदर स्वचिंतन, आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन हम करते हैं, जिससे एकदम मन सकारात्मक विचार से भरपूर हो जाता है। यू चार्ज योरसेल्फ। तो मेडिटेशन इज द ओनली वे, राजयोगा मेडिटेशन। यहां दुनिया में बहुत प्रकार के मेडिटेशन सिखाते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, इट इज ए साइंस ऑफ एम्पावरिंग द सेल्फ। अपने आत्मा को सशक्तिकरण, आपके मनोबल विकास करने के लिए ये एक विज्ञान है। इसमें मेडिटेशन करना खाली आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाना, उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता है। मेडिटेशन करना मना अपने को एक चेतना शक्ति, एक अविनाशी इनफाइनाइट सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आत्मा समझते हुए पिता परमात्मा को याद करना, प्रभु चिंतन करना, उसको नाम मेडिटेशन है। एंड मेडिटेशन इज द स्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर स्ट्रेस, टेंशन। आज दुनिया में जो लोगों को टेंशन है, तनाव है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, उससे तो और ही स्वास्थ्य बिगड़ता है। कोई डॉक्टर के पास जाता है तो ट्रैंकुलाइजर गोली खाता है, सोता है, जैसे उठता है फिर वही हाल। लेकिन मेडिटेशन बिना कोई खर्चा, आपके 100% मैं एश्योरेंस दे सकता हूं, आपका टेंशन खत्म हो सकता है। मैं एज ए डॉक्टर क्यों कह रहा हूं, आई एम एसोसिएटेड विथ ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी सिंस लास्ट 30 इयर्स। 30 साल से मैं मेडिटेशन खुद प्रैक्टिस कर रहा हूं। किस लिए? व्हेन आई फिनिश्ड माय मेडिकल एजुकेशन, मैं एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जॉब किया, ज्वाइन किया, डेली 200-300 पेशेंट, डेली 200-300 पेशेंट। और सरकारी हॉस्पिटल में, म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में, आप सभी को पता होगा कि वहां कोई क्यू में नहीं आता है, प्राइवेट क्लिनिक की तरह। एक ही साथ मच्छी बाजार की तरह 25 आदमी आपको घेर के एक ही साथ चारों तरफ से चिल्ला रहे हैं, मेरे सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, नाक दर्द हो रहा है, कैसा लगेगा आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत थोड़े समय में मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। लेकिन खाली चिल्लाते तो अलग बात है, लेकिन कई मरीज में बैठा हूं ऐसे कुर्सी में, एकदम मेरे नजदीक आके मैं पूछता था क्या हुआ भाई, कुछ मुंह से नहीं बोल रहा है, एक हाथ मेरे छाती में, दूसरा हाथ मेरे पीठ में, और यहां मेरे छाती में दबा के, डॉक्टर साहब मेरा यहां दुखता है, जोर से दबा के यहां दुखता है। अरे भाई तू तेरा छाती दबा ना, मेरा छाती क्यों दबा रहा है? मैं सोचता है कि बहुत कम उम्र में पागल हो जाऊंगा। अरे ऐसे समय पर ही आई केम इन कॉन्टेक्ट विद ब्रह्मा कुमारी, जो बहने मुझे मेडिटेशन जब सिखाए, यू वोंट बिलीव, एक महीने के अंदर मेरा जीवन पूरा परिवर्तन हो गया। वही हॉस्पिटल में आई बिकम द मोस्ट पॉपुलर डॉक्टर इन दैट हॉस्पिटल। आज 30 साल के बाद भी लोग मुझे याद करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, टेंशन से बचने का कोई रास्ता नहीं है, एक ही मात्र विधि है मेडिटेशन, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए इट इज द स्योरेस्ट मेडिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, बहुत इट इज अ वेरी शॉर्टकट वे फॉर ए हैप्पियर फुलफिल्ड स्ट्रेस फ्री लाइफ। डिस्कवर ए रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी दैट कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी आप मेडिटेशन की विधि सीख जाइए, विधि पूर्वक करेंगे, सिद्धि आपको यू मिलेगी। आप देखिए जीवन में क्या प्राप्ति होती है। आप सभी को यही संदेश दीजिए, मेडिटेशन सीखिए तनाव से मुक्त होना है तो। नेक्स्ट है बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट। बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट, देखिए हमारा शरीर एक गाड़ी है। जैसे किसी गाड़ी को आप क्या करते हो, गाड़ी को क्या करते हो, चलाते हो, और गाड़ी में क्या करते हो, क्या करते हो, पेट्रोल डालते हैं। डीजल गाड़ी में भी पेट्रोल डालते हैं, हम फ्यूल डालते हैं। एक डीजल गाड़ी में डीजल डाला जाता है, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है। अगर उसमें केरोसिन डाल रहे हो, उसमें नारियल का तेल डाल रहे हो, क्या होगा? लेकिन आज मनुष्य क्या डाल रहे हैं देख लो, आज क्या डाल रहे हैं देख लो, क्या होगा सोचिए तो सही। मनुष्य एक हर्बीवोरस एनिमल है। शेक्सपियर लॉन्ग बैक टोल्ड, लेट मी नो योर डाइट, आई विल टेल व्हाट यू आर। तुम क्या खाते हो मुझे बता दोगे तो मैं बता दूंगा तुम किस प्रकार का आदमी हो। लेट मी नो योर फ्रेंड्स, आई विल टेल व्हाट यू आर। तुम किसके साथ उठते बैठते हो बता दो, मैं बता दूंगा तुम किस प्रकार का आदमी हो। तो हमारा अन्न का, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे जीवन, हमारे हेल्थ से एकदम सीधा सा संबंध है। अगर हमारा भोजन ठीक नहीं होगा तो आपको कोई हेल्दी रख ही नहीं सकता है, मैं बताऊं। इसलिए जीवन में हमारे खान पान को सुधारना जरूरी है। क्या ये सब हेल्दी है? जो कहते हैं हेल्दी है हाथ उठाए। अच्छा हेल्दी है, एक दो उठा रहे कोई, ये सब हेल्दी है? कोई नहीं उठा रहे। हेल्दी है ये, हेल्दी है ये, कोल्ड ड्रिंक्स हेल्दी है? हाँ ये दिखा रहा था ना, कोल्ड ड्रिंक्स ही दिखा रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स हेल्दी है क्या, मैं पूछ रहा था। ये कैसे हेल्दी है मैं दिखा देता हूं, आप देख लीजिए एक वीडियो क्लिप, जस्ट देख लीजिए सभी सब, एक मिनट एक वीडियो क्लिप है देख लीजिएगा। सभी अच्छी तरह से देखिए, सभी की आंखें खुल जाएगी।
साउंड बढ़े। शालीमार टाउनशिप इंदौर, टुडे मॉर्निंग आई एम
डॉक्टर,
बिग सरप्राइज,
थोड़ा साउंड बढ़े।
गोइंग टू ओपन योर आईज फॉर योर हेल्थ, यू नो टुडे मॉर्निंग एक्चुअली द थिंग इज दैट कि फ्यू डेज बैक देयर वाज अ पार्टी एट माय हाउस एंड फॉर दैट पार्टी आई थॉट आई शुड गेट सम फ्रेश फ्रूट जूसेस। सो आई वेंट टू द मोर मेगा स्टोर विच इज लोकेटेड एट C21 मॉल इन इंदौर। आई हैड बीन देयर एंड आई जस्ट परचेज दिस रियल फ्रूट मिक्स फ्रूट जूस इन अ लार्ज पैक एंड फॉर्चुनेटली ऑन दैट पर्टिकुलर इवनिंग वी डिड नॉट फाउंड टू ओपन दिस पर्टिकुलर फ्रूट जूस, देर वॉज नो नीड टू ओपन। नाउ टूडे दैट इज अ संडे मॉर्निंग वी डिसाइडेड दैट वी शुड हैव दिस फ्रूट जूस। सो वेन माई वाइफ जस्ट टूक इट एंड जस्ट वॉन्टेड टू सर्व दिस जूस टू मी, she has found that the head of this particular fruit juice pack was depressed. It was loosened. Then she felt something fishy in this. That's why she cut open. You can see it here. Just look at this real fruit juice. When she cut open this particular real fruit juice pack, then she has found that there's something which is lying in this particular fruit juice pack. It looks like a fungus, or it looks like a dead animal, something like a small lizard. So guys, be careful. This is a real fresh fruit juice pack which has been recently brought. You can clearly see the manufacturing date on this. It is written it as 5/6/2015. It is not very old also, but God.
मेरा कहने का भावार्थ है, देखिए ये सब बाजार में खूब मिलता है, हम सभी ये सब हाइजीनिक सोच के पी रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है आप सोच लीजिएगा। इसमें प्रिजर्वेटिव है, दे कैन क्रिएट कैंसर। इसमें सारे कोई हाइजीन का कोई ठिकाना नहीं। डेड एनिमल, उसमें लिजर्ड है, फंगस है। हम कभी कोट अपन करके तो खुलते नहीं, सीधा स्ट्रॉ डाला पी लिया, क्या होगा आप सोचिए। ये सब हमारे बच्चे पी रहे हैं, ये सब खोल के पी रहे हैं, इसमें 50 पैसा का भी फूड वैल्यू नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ ना विटामिन है ना न्यूट्रिशन है, ये सब एम्प्टी कैलोरीज है, ये सब खा के सब बीमारियां हो रही है। सो प्लीज डोंट टच ऑल दीज थिंग्स। मैं बताऊं, ये लोगों को संदेश दीजिए, आप ही बता सकते हैं, आप ही सब सारे देश को जगा सकते हैं, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। ये सब हमें टच भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, इज ह्यूमन बीइंग कार्निवोरस? क्या मनुष्य मांसाहारी है? मांसाहारी है? जो कहते हैं मनुष्य मांसाहारी है, हाथ उठाओ। पीछे दो तीन उठा रहे हैं। अच्छा, मांसाहारी है मनुष्य? तो देन सी, लुक एट दिस, क्या हमारे पास इतने बड़े बड़े दांत है मांस को खाने के लिए, फिर भी हम खा रहे हैं? क्या हमारे इतने बड़े बड़े नाखून है किसी को शिकार करने के लिए, फिर भी हम खा रहे हैं? दुनिया में दो प्रकार के प्राणी है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, हमारे बायोलॉजिकल जो गठन है एक शाकाहारी प्राणी की तरह है। आप एक बकरी को काटिए, उसके जो इंटेस्टाइन है बहुत लंबी निकलेगी, लेकिन एक शेर को काट के देखिए, छोटा सा ही इंटेस्टाइन निकलेगा। तो कहने का मतलब है मनुष्य की जो इंटेस्टाइन है बहुत लंबी है, क्योंकि इसमें हम जो सेलुलोज, जो प्लांट्स की जो चीजें खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आवश्यक है। तो मनुष्य का जो शारीरिक गठन है एक शाकाहारी प्राणी की तरह है, लेकिन ये सब हम खा रहे हैं। और मर्सिलेसली वी आर किलिंग एनिमल्स एंड वी आर ईटिंग ऑल दीज थिंग्स। क्या सचमुच ये मानविकता है? ये सब जो जानवर पशु पंछी, इनको जिसको हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, घर में रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सर्दी गर्मी से बचाते हैं, रेस्ट सेट बनाते हैं उनके लिए, बीमार होते हैं तो वेटरनरी सर्जन के पास जाके इलाज कराते हैं, और वन फाइन मॉर्निंग उसको काट के हम खा जाते हैं। क्या यही मानविकता है? यही मानविकता है? हमारे बच्चों को अगर कोई ऐसे खाए कैसा लगेगा, सोचिए तो सही। और जब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाता हूं, आप सभी मेरे सभी आप देश के गणमान्य व्यक्ति आप सभी बैठे हो, मैं आप सभी को संदेश सुनाना चाहता हूं। एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिएगा, फिर आप डिसाइड कीजिए कि हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। सॉरी, आप सभी अच्छी तरह से थोड़ा देखिए, मेरा नम्र निवेदन है, अच्छी तरह से देखिए।
हमारे मांस के व्यापारियों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव पेश किया जाता है। दुनिया में हर रोज दुर्घटना या आघात से हजारों लोगों की मृत्यु होती है, जिनमें से हजारों लावारिस लाशों को सड़ने, गलने, जलने या गाड़ने से बेहतर मांसाहार के रूप में भक्षण किया जाए तो बेहद मुनाफे का सौदा हो सकता है। और हमें एक आम मृत मनुष्य के शरीर से कम 40 किलोग्राम तृप्तिदायक मांस की उपलब्धि हो सकती है। बची खुची हड्डियों और कंकाल से बनी डिजाइनर ज्वेलरी और टूथपेस्ट का मुनाफा उसके अलावा। अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाए तो मांस बाजार का नजारा कुछ ऐसा भी हो सकता है। और शायद कुछ मांसाहारी अपने आहार को नाम से भी पहचान लें। क्यों, क्या बुराई है? मरे हुए को खाना कोई अपराध नहीं, यही होता है ना? अगर किसी भोजनालय की स्वादिष्ट यानी में मुर्ख की जगह मसालों से लिपटे इंसान के टुकड़े इस्तेमाल किए जाएं, तो कितने मांसाहारियों को भला पता भी नहीं चलेगा। ऐ नादान मानव, मृत का देह संस्कार शमशान या कब्र में किया जाता है, अपने शरीर के भीतर कदापि नहीं। परंतु मुर्गे, सांड, बकरे, सुअर, मेंढक इत्यादि का भक्षण करने वाले तो बेपरवाह अपने में ही पचा जाते हैं, चलते फिरते, हंसते जागते, कहीं से कहीं अगलनीय दुर्गंधदायक मांस को। तो मांसाहारियों को चलता फिरता शमशान कहा जा सकता है। प्यारे पशु, प्यारे पक्षी प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, हमारे दैनिक कार्यों में तरह तरह से मददगार भी साबित होते हैं, और थोड़े से ही प्रेम और सहानुभूति के दान से जीवन भर ये मनुष्य जाति से भी ज्यादा विश्वासी और वफादार बने रहते हैं। और अगर दुनिया में सबसे बुद्धिधारी जीव इंसान है, तो फिर कैसे हम विश्वासघात कर सकते हैं निष्पाप पशु पक्षियों के प्रति? फिर कैसे हमारी चेतना पशु हत्या जैसे महापाप को बढ़ावा दे सकती है? क्या आपने स्वादिष्ट और लजीज मांसाहार के पीछे कभी झांक कर देखा है? क्या आपने हर चिकन बर्गर के पीछे मासूम जानवरों की चीखों को सुना है? क्या हर मटन खाने वाले ने उसके पीछे कटने वाले प्राणी के दर्द को महसूस किया है? एक मांसाहारी के द्वारा पूरे जीवन भर में खाए गए हजारों लाखों प्राणियों की चीखों बदुआओं से मिलने वाले अभिशाप के बारे में सोचें तो मानव जाति के नाम पर लगा एक कलंक नजर आए। पेट पूजा का मतलब क्या नमक मिर्च मसाले में भूनकर कुछ भी निगल जाना होता है? मल त्याग करने से प्रायश्चित भी तो नहीं होता है। ये हिंसक प्रवृत्ति नहीं तो क्या है जो किसी की टांग, किसी का कलेजा, किसी के हाथों के टुकड़े पर पलकर अपनी पेशियों को मजबूत करें? कहावत सच है, इंसान के चरित्र की जानकारी उसकी खाद्य रुचि से होती है। विश्व भर के वैज्ञानिकों और निरीक्षकों ने यह प्रमाणित किया है कि मांस खाद्य हृदय का दौरा, कैंसर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कब्ज, बदहजमी, कलेजा और गुर्दे का पत्थर इत्यादि जैसे जानलेवा और खर्चीले रोगों का निस्वाद उपहार है। पाश्चात्य देशों में जहां मांसाहारियों की संख्या सर्वाधिक है, ऐसे भयानक रोगों का जीवन नाशक तांडव चरम पर है। हालांकि भारत, जापान, अफ्रीका जैसे देशों में तुलनात्मक कम है, जहां शाकाहारियों की संख्या अधिक है। अमेरिका में प्रतिवर्ष 47,000 से अधिक मांसाहारियों के बच्चे जन्मगत रोगों के भुक्त भोगी होते हैं। जरा सोचिए, आपके बच्चे की बीमारी का कारण आपकी स्वाद लोलुप रुचि भी हो सकती है। देखा गया है कुछ पिछड़ी हुई प्रजातियां आधुनिकीकरण से दूर शुद्ध शाकाहारी भोजन पर गुजारा करने वाले जैसे हुजा जाति के प्रवासी 90 से 110 साल तक जीवित रहते हैं। और ये पकता हुआ मांस बाजार से हमारी थाली तक के सफर में असंख्य बीमारियों को साथ लेकर आता है। मिर्गी रोग, अल्सर, अपेंडिक्स, संग्रहणी और मांसपेशी घाव, यकृत संबंधी रोग, स्नायु ग्रंथियों संबंधी विभिन्न प्रकार के क्षय रोग, कैंसर, रोग प्रतिरक्षा शक्ति का नाश, एक्जिमा व मुहासों जैसे त्वचा रोग, स्त्रियों के अनेक रोग और मासिक धर्म की व्याधियां मांसाहारियों में अधिक दिखाई पड़ती है। कुछ तथाकथित बुद्धिमान लोगों का कहना है कि अंडा शाकाहारी होता है। वो कैसे? शाकाहारी भोजन का अर्थ है सूर्य, जल, वायु, अन्य पार्थिव तत्वों से उत्पन्न भोजन। मगर पोल्ट्री में पैदा किए गए लाखों अंडे हजारों लाचार पक्षियों को कैद में रखकर कृत्रिम हार्मोन्स के हार्मोनल इंजेक्शनों से अर्जित कर जबरदस्ती इनसे अप्राकृतिक मात्रा में अंडे दिलाए जाते हैं, तक जब तक कि वो और अंडे देने के काबिल न रहे। बस सिर्फ आपका पकवान बनने की खातिर बलि चढ़कर किलो दो किलो में बिक न जाए। हमें शाकाहारी भोजन खाने के लिए जबरदस्ती किसी का हाथ पैर या सिर पकड़कर कुचलना नहीं पड़ता, ना ही खून से हाथ रंगने पड़ते हैं। फिर क्यों हम निर्बल, मासूम, असहाय प्राणियों का जीवन हरते? क्यों उनके सिर बेरहमी से विच्छेद करके उनके धड़ का स्वाद लें? ये तो शुक्र है कि अब तक मानव मांस प्रचलन में नहीं, नहीं तो आप ही के किसी प्रियजन का अंग कड़ाही में पक रहा होता और कोई जगन्य मांसाहारी उसका इंतजार कर रहा होता। जब हम मानव की ऐसी दुर्दशा की कल्पना मात्र से भाव पड़ते हैं तो उन लाखों मासूम प्राणियों के ऊपर क्या गुजरता है? किसी भी धर्म में मांसाहार को अच्छा नहीं बताया गया है। हमें कोई एतराज नहीं, आप किस स्वादे अंदाज में जीना चाहते हैं? लेकिन प्रायश्चित की एक राह अवश्य बता सकते हैं। जीते जी आपको गीदड़ों का भोजन बनाकर अर्पण किया जाए तो शायद ईश्वर आपको मुक्ति भी दे दे, नहीं तो मरने के बाद आपका मांस व्यापारियों की दुकान में 60-70 रुपए किलो बिकने लगेगा। ऐ शैतान तेरा मुंह काला, सेवन जो तू करता है लहू का निवाला। पाखंडी, अपनी लोभी जीभ के बल पापों का हिसाब ना निकाल, जीते जी मर जाएगा, पित्त में गल जाएगा, पेट की अग्नि शमशान में खुद बखुद जल जाएगा। जमीर का कत्ल न कर, नरक के द्वार से न गुजर, कुदरत की देन को आशीर्वाद समझ, लंबी आयु जीने सहज। अब तय आपको करना है कि आप निरीह जीवों को जीवन दान देकर सभ्य शाकाहारी बनना चाहते हैं, या पिशाचों की भांति लहू मांस हाड़ को निकलकर चलता फिरता शमशान बनकर रहना चाहते हैं।
थैंक यू। मेरे भाई और बहनों, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहलाता है, परंतु आज जिस प्रकार हम दूसरे जीव जंतु को कत्ल करके खा रहे हैं, क्या यही मानवीयता है? नहीं नहीं, हमें वास्तव में शुद्ध शाकाहारी बनना जरूरी है। हमारे भारतवर्ष में एक समय था जब हमारी संस्कृति, हमारे देवी देवताओं के, आज तक मंदिरों में आप देखिए हमारी मूर्ति के सामने लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता की मूर्ति के सामने क्या ऐसे मांस पका के हम अर्पण करते हैं? जब मूर्ति तक भी हम नहीं देते हैं तो जब वो थे खाते थे। हमारे देश की सभ्यता बहुत श्रेष्ठ थी, लेकिन हम अनेक प्रकार के धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होके अनेक पाश्चात्य सभ्यता को अंधानुकरण करते करते यही हमारी हालत है। तो मैं समग्र विश्व को, सभी जनता के आंखों खुलने तक आपका ही बहुत बड़ा एक रोल होगा, इसलिए मैं आपको दिखाया कि आप यही संदेश दीजिए, सब हम शाकाहारी भोजन करें और हमारे जीवन शैली को परिवर्तन करें। साथ साथ हमारे जीवन में बहुत एक इम्पोर्टेंट है कि हमें नियमित व्यायाम करना, क्योंकि हमारे देश में प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने भी देखा था कि अगर भगवान को याद करना है, योग करना है, तो भी एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। तो इसलिए उन्होंने हमको योगासन और ये सब पोस्चुरल एक्सरसाइज आदि आदि ये सब सिखा के गए थे, ताकि हम बिना कोई इक्विपमेंट, कोई हेल्थ क्लब जिमखाना में जाके भी हमारे शरीर को निरोगी बना सके। तो आज आवश्यकता है कि हमें एक स्वस्थ शरीर के लिए नियमित व्यायाम करना, जो महात्मा बुद्ध भी हजारों साल पहले कह के गए थे कि ये शरीर एक गाड़ी है, आप इसके अगर आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, तो गाड़ी का भी संभाल करो। सो एक्सरसाइज इज गुड फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। जो नियमित एक्सरसाइज करता है उसके ब्रेन से एंडोर्फिन्स निकलते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए नियमित रूप में व्यायाम करते हुए हम एक निरोगी काया बना सकते हैं, लेकिन आज सेडेंटरी लाइफ सभी का हो चुका है। हम अगर नियमित रूप से मोबाइल, इंटरनेट सब करना, मोबाइल ये करना, बार बार ये सब देखना, इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए अगर हमारे पास समय है, तो एक्सरसाइज करने के लिए भी जरूर समय है। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट। हम कहते हैं हम बिजी है, परंतु अगर निरोगी रहना चाहते हैं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हमारे संबंध, अगर हमारे संबंध ठीक नहीं है तो भी जीवन में कभी भी हम बीमारियों से मुक्त नहीं रह सकते हैं। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन देखिए किस प्रकार का है। क्या हमारा रिलेशन, आपस में जो संबंध है, क्या ये हेल्दी है? क्या हेल्दी है? आज लोग कितने स्वार्थवश है, उनका लव जो है कंडीशनल है, अनेक प्रकार की सीमित चिंताधाराओं से ही लिमिटेड है। परंतु जब हमारे वास्तव में रिलेशन सकारात्मक हो जाएगा, सबके प्रति निस्वार्थ होगा, प्रेम भाव होगा, कोई विदाउट एनी सेल्फिशनेस, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस होगा, अनेक दूसरों की विशेषताओं को देखते हुए, ना कि उसकी शारीरिक सुंदरता से ही हमारी मनोवृत्ति और हमारी जो स्नेह है किसी के साथ सीमाबद्ध होगा, तो ही हम जीवन में वास्तव में सुखद जीवन जी सकते हैं, एक सुंदर पारिवारिक जीवन जी सकते हैं। हमारे मन वास्तव में इतना पवित्र हो जैसे एक छोटे बच्चे। छोटे बच्चों के मन में देखिए कोई कुटिलता, जटिलता, कोई प्रकार की कॉम्पिटिशन ये सब भावना नहीं होती है। बहुत सुंदर सात्विक शुद्ध भावना होती है। इस प्रकार हमारी विचारधारा, हमारे बोल कैसा होना चाहिए। दो मिनट हो गया ये लास्ट स्लाइड। तो देखिए हमारे बोल कैसा होना चाहिए। बोल भी हमारे मुख से ऐसा शब्द निकले जो दूसरों के लिए सुखदायी हो, किसको उमंग उत्साह देने के लिए, किसको रास्ता दिलाने के लिए, किसके जीवन में कुछ अच्छी चीजें के लिए, अगर हमारे उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बोल हो, उसको ही हम कहें कि प्योरिटी इन आवर वर्ड्स। इसी प्रकार हमारे कर्म में भी प्योरिटी होनी चाहिए। साथ में लास्ट स्लाइड है आपको, नेक्स्ट। हमारे एक्चुअली महात्मा गांधी के पास तीन बंदर थे, हम सभी जानते हैं, सी नो एविल, हियर नो एविल, टॉक नो एविल। परंतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में सात बातें सिखाई जाती है। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, साथ साथ बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, बुरा मत खाओ, बुरा मत पढ़ो। ये सात बातें अगर जीवन में हम धारण करेंगे तो ही हम मनुष्य से देवता इसी जन्म में कहलाएंगे, लोग हमको अभी से देवात्मा कहेंगे। तो यही बातें जीवन में होनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। ये सब बातें आप सभी जानते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आठ बातें अगर जीवन में हम अनुकरण करेंगे तो इसको ही स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल कहा जाता है। सो द टेक होम मैसेज इज, मेडिटेट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, सवेरे जल्दी उठे। मेडिटेशन को मानसिक एक्सरसाइज कहा जाता है और फिजिकल एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। साथ में ऑलवेज बी वेजिटेरियन, ईट मॉडरेट, अति आहार अनाहार स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसी प्रकार ड्रिंक एडिक्वेट वाटर, दिन में 3-4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, तो ही हम अनेक प्रकार की कॉन्स्टिपेशन आदि बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। और ईट अर्ली एंड स्लीप अर्ली, जल्दी खाएं जल्दी सोएं। आज लोग लेट खाते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, इसलिए सब प्रकार की बीमारियां हैं। और अवॉइड फास्ट फूड्स, से नो टू एडिक्शंस, बिल्कुल ही टच नहीं करना है। डू यू रियली वॉन्ट टू बी हेल्दी, कोई भी यस नहीं बोल रहे हैं क्या? आप सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं? अभी भी धीरे धीरे बोल रहे हैं क्या? सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं? यस, अभी ठीक बोला। सो माई रिक्वेस्ट विल बी द नेक्स्ट स्लाइड, प्रैक्टिस राजयोगा मेडिटेशन। मेडिटेशन ही एक ही मात्र रास्ता है जिससे आप तनाव मुक्त रह सकते हैं, और तनाव मुक्त रहेंगे तो आज जो मॉडर्न बीमारियां हैं ये सब बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हो। जिसको 20-20-30-30 साल से भी शुगर, जिसका अनकंट्रोल्ड है ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड है, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट अबू हमारे ऊपर आते हैं जहां हम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज मैनेजमेंट, जो ये सारी बातें मैं लोगों को सिखाता हूं। सवेरे उठ के एक्सरसाइज सिखाता हूं, मेडिटेशन कराता हूं, 5 दिन के अंदर 100% मैं गारंटी देता हूं उनका शुगर 100% ठीक हो जाएगा। क्योंकि बाहर दुनिया में खाली दवाई से ही इलाज करते हैं, लेकिन जब हमारे पास आते हैं, जब मेडिटेशन सिखाता हूं, एकदम पूरा स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाता है, 5 दिन में 100% कंट्रोल हो जाता है। तो मेरा नम्र निवेदन है, आप सभी ये सब पॉजिटिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए, आप रोल मॉडल बनिए, लोगों को सिखाइए। इसमें ही हम देश को बचा सकते हैं। जो संकटकालीन परिस्थिति अभी चल रही है, 10 लाख लोग अगर एक बीमारी से मर सकते हैं तो आप सोचिए हर साल, तो ये बीमारी से हम सभी को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी 2 मिनट एक एक्सरसाइज करेंगे, बहुत समय बैठे हैं, 2 मिनट करेंगे एक एक्सरसाइज। सभी खड़े हो जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो सबको करना जरूरी है, मैं आपको अभी करा के दिखाऊंगा, देखना। जो भी जहां खड़े हैं किसी को टच नहीं करना, ना चेयर पकड़ना ना किसी को टच करना, अकेले खड़े होना, सिर्फ खड़े होके एक पांव जमीन से ऊपर थोड़ा सा ऐसे उठाना, एक पांव जमीन से ऐसे थोड़े उठा के खड़े होना। मेजोरिटी खड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जिनका एज थोड़ा ज्यादा हो गया थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अभी पांव रख दीजिए नीचे, पांव रख दीजिए, दोनों आंखें पूरा बंद कर दीजिए। जैसे ही पांव उठाए थे ऐसे ही जमीन से उठा के 1 मिनट खड़े होना, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके 1 मिनट। जो 1 मिनट खड़े होंगे उनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। सब लड़खड़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूं सब लड़खड़ा रहे हैं। ओपन योर आइज। 1 मिनट खड़ा होना बहुत डिफिकल्ट है। जो 40 साल से उम्र जिसका है मुश्किल है, 40 साल से जिसका उम्र कम है खड़ा हो सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम वास्तव में एज जैसे बढ़ता है, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के संतुलन बिगड़ता जाता है। आप देखना, थोड़े उम्र हो जाता है, जरा सा कहीं पांव फिसल गया, कि स्टेप मिस हो गया, धड़ाम गिरते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, खास करके लेडीज के लिए। तो मैं एक एक्सरसाइज सिखाऊंगा जिसमें आपको एक संगीत के साथ देखना, आपका पांव एकदम मजबूत रहेगा, कभी गिरेंगे नहीं। करेंगे? चलिए मैं जैसे करता हूं आपको मुझे देख के करना है। गीत बजाइए, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओके, लास्ट मैं जैसे करता हूं सभी को करना है। आप बीच में खड़े होके पांव को ऐसे टच करना, ले आना, ऐसे खड़े नहीं होना है, खड़े नहीं होना है, टच करके ले आना, टच करके ले आना। साउंड थोड़ा बढ़ाइए। टच, 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 अभी फास्ट कर सकते हैं। एक दो, एक दो, नहीं पांव ऐसे उठाना नहीं है, ऐसे टच करके ले आना, टच करके ले आना। एक दो, एक दिल दो, एक दो, आपका थाई मसल मजबूत हो जाएगा, एकदम स्ट्रांग होगा, गिरेंगे नहीं। एक दो, एक दो, एक करिए करिए, सभी कर रहे हैं। टच करके ले आना, ये नी थोड़ा बेंड होगा, टच करके ले आना। सभी गाओ, मेरे संग संग गाओ, सभी
मेरे संग
गाओ, गाओ सभी
चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।
अभी चेंज, पांव आगे ऐसे, एडी टच होगा, खाली एडी टच करके ले आना, रखना नहीं है, टच करके ले आना, ऐसे टच करके ले आना। टच 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 टच, पूरा पाँव नहीं, एडी खाली टच होगा। एक दो, एक दो, अभी पास
बोलो में,
एक
कोयल,
एक दो, लेफ्ट राइट,
बुलबुल की तरह मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों
करे 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 करे, ताल मिलाए मेरे साथ। एक
बजता
दो,
है
एक
बजता
दो,
है
एक
मेरी संग
सभी
बाबा, मेरी संग संग चलते हैं।
सभी नहीं गा रहे हैं, यस,
मेरे संग संग,
अभी चेंज, अभी पांव पीछे जाएगा। एक दो, ऐसा टच करके ले आना, टच,
सोचो में
टच, ऐसे पांव पीछे जाएगा, देखिए टच टच,
झूमो में
आपके थाई मसल स्ट्रांग होगा, आप गिरेंगे नहीं। क्वाड्रिसेप्स
में टच, जुगनू
टच, टच,
मुस्कान टच, फूलों की तरह
टच, हाँ सभी
मेरी यादों में रहते हैं बाबा,
एक
मेरी यादों में रहते हैं
दो, एक
दो,
एक दो, एक दो, एक दो, अभी पास, एक दो, लिफ्ट, जैसे मल्टीमैन कैसे करते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ये गीत इतना लंबा है, अभी पसीना छूट जाएगा, ये बहना ने जल्दी कर रहे हैं, इसलिए ये गीत अगर पूरा 5-10 मिनट आप करेंगे आपका पसीना छूट जाएगा, आपका बॉडी बैलेंस रहेगा, इसलिए रेगुलर करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।